नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जबरदस्त नौटंकी नाटक हंगामा चल रहा है इस समय राजस्थान में, और इस समय जो पूरा का पूरा नाटक है वो यहाँ तो समाप्त होके और दिल्ली शिफ्ट हो गया। और प्रश्न ये उठ रहा है कि साहब की ये लड़ाई जो है ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की है, और इसमें से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मैं इसका आकलन थोड़ा सा दूसरी तरह से करता हूँ। मेरा ये मानना है कि यह जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की ना होके ये पूरी लड़ाई इस समय अशोक गहलोत वर्सेस हाई कमांड है, और इसमें ना तो अशोक गहलोत जीतेंगे, ना हाई कमांड जीतेगी, ना सचिन पायलट जीतेंगे, इसमें जीतेगी बीजेपी, और बीजेपी बिना खेले जीतेगी। आपको ध्यान है 2 वर्ष पहले पूरा का पूरा खेल हुआ था, और सचिन पायलट ने जब बगावत की थी, विद्रोह किया था, तब पूरी तरह से उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से वो भी उसमें खिलाड़ी थी। वो सफल नहीं हुआ क्योंकि वो ये भूल गए थे, संभवतः भारतीय जनता पार्टी वाले भी भूल गए थे और सचिन पायलट भी भूल गए थे कि अशोक गहलोत जी का जीवन में एकमात्र ध्येय रहा है सत्ता को साध कर रखना येन केन प्रकारेण। इसीलिए वे एक समय इंदिरा गांधी जी के साथ थे, तो इंदिरा गांधी जी के समय सबसे यंगेस्ट वो मंत्री भी बने थे, और जब उनकी भदोड़ी थी दूरदर्शन पर, क्योंकि तो बोलना उन्हें ना तो तब आता था ना आज आता है, भाषण वाषण वो दे नहीं सकते, वो सिर्फ पर्दे के पीछे की राजनीति में माहिर हैं, और पर्दे के पीछे की केवल राजनीति में माहिर हैं, प्रशासन भी वो कर नहीं सकते, और उसका वो कई बार प्रमाण दे चुके हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रहते हुए बुरी तरह से 2 बार वो चुनावों में हारे हैं, और एक बार तो उन्होंने राजस्थान में रिकॉर्ड कायम किया था 200 में से केवल 21 सीटें लाकर मुख्यमंत्री रहते हुए। तो निश्चित रूप से जो हाई कमांड है उसको चिंता तो हो रही थी, उसको चिंता ये हो रही थी कि अब आगे क्या होगा। 2 बार तो ये मुख्यमंत्री रहते हुए रिकॉर्ड तोड़ हार हासिल कर चुके, इस बार क्या होगा। उन्होंने सर्वे इत्यादि कराए, सर्वे इत्यादि करने के बाद पता चला कि हालात तो वैसे ही रहने वाले हैं जो 2003 में और 2013 में रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे में जो हाई कमांड है वो क्या सोचेगी। हाई कमांड राहुल गांधी को बनाना चाहती है प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि जो कम से कम प्रदेश उनके पास हैं वो तो बने रहें। अगर वो भी नहीं बने रह पाएंगे तो फिर वो आगे चलकर किस बेसिस पर, किस आधार पर, किस नींव पर अपने प्रधानमंत्री की कवायद करेंगे। और इसलिए उन्होंने ये सोचा कि भाई क्या किया जाए, हम अशोक गहलोत को किक अप कर देते हैं। देखिए, राजनीति में, प्रशासन में ये एक बहुत पुराना तरीका रहा है कि कोई आदमी यदि असुविधाजनक हो जाए, इनकन्वीनियंट हो जाए प्रशासन में, राजनीति में, तो उसको एक दिखावे के इस पद पर वो है उससे बड़े पद पर पहुंचा दो। यदि वो मुख्यमंत्री है तो उसको केंद्रीय मंत्री बना दो, और यदि वो जनरल सेक्रेटरी है बहुत पावरफुल तो उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दो। सबको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट केवल नाम का होता है, उसके पास कोई पावर नहीं होती। सबको पता है कि बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों को यदि आज यह ऑफर दिया जाए कि वे अपने प्रदेश में जाकर मुख्यमंत्री बन जाएं, तो वो मुख्यमंत्री बनना ज़्यादा पसंद करेंगे, चाहे वो किसी छोटे से राज्य त्रिपुरा का ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारे अशोक गहलोत जी भी यही चाहते हैं कि भाई मुझे तो पार्टी प्रेसिडेंट का पद नहीं चाहिए, मुझे तो बने रहना है ये इनके इन प्रकारेण, मुझे तो किसी भी तरह से चाहिए यदि तो केवल और केवल मुझे पद चाहिए राजस्थान के मुख्यमंत्री का, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के लिए वे हर वो कार्य करेंगे जो आप जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और वो उन्होंने किया। तो इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? मुझे तो लगता है कतई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, कल आपको ध्यान है कल हमने यहाँ पर एक सेशन किया था और हमने ये कहा था कि भाई ये कितनी भी कोशिश कर ले, हाई कमांड जो है इस बात पर आमादा है, इस बात पर बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ है कि उनको तो किसी भी हालत में बनाना है, यदि मुख्यमंत्री अगला तो वो बनाना है सचिन पायलट को। तो सचिन पायलट को उनको मुख्यमंत्री बनाना है, ये मैंने आपको कल डिक्लेयर कर दिया था। मैंने ये भी कहा था कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन साथ में मैंने कैवियट लगाई थी, आपको ध्यान हो, मैंने कुछ कंडीशंस लगाई थी और ये कहा था कि भाई जो सचिन पायलट का मामला है उसमें अशोक गहलोत जी आगे क्या खेल करेंगे वो भी पता नहीं है। और ये बात मैंने कही थी कि लगभग 3:30 बजे के बाद, और उसी समय जो है वो बातचीत चल रही थी और बातचीत इस प्रकार की चली कि इन्होंने अपने 3 दूत जो थे वो भेज दिए और उनके सामने शर्तें रख दी। शर्तें क्या रखी, वो भी विचित्र विचित्र सी शर्तें जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप क्या करने आए हैं, एक लाइन का रेजोल्यूशन आप चाहते हैं। उनका एक लाइन का रेजोल्यूशन जैसा होता है, जैसी परंपरा है, वो एक लाइन का रेजोल्यूशन लिया जाएगा, उस एक लाइन के रेजोल्यूशन के आधार पर अधिकृत किया जाएगा कांग्रेस अध्यक्षा को कि वे राजस्थान के संबंध में जो निर्णय चाहें वो ले लें, जिसको चाहें उसको मुख्यमंत्री मनोनीत कर दे। तो इन्होंने कहा कि हमारी शर्तें हैं उसके लिए, हमारी 3 शर्तें हैं, उन 3 शर्तों को आप माने, उन 3 शर्तों को आप मानेंगे तो ही हम आगे भाग लेंगे। वो क्या 3 शर्तें हैं? उनका पहले शर्त तो ये है कि ये कार्य 19 अक्टूबर के पहले नहीं होना चाहिए। 19 अक्टूबर का मतलब 19 अक्टूबर वह दिन है जिस दिन कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, यानी जिस दिन अशोक गहलोत जी अध्यक्ष बनेंगे, तब तक ये डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि सचिन पायलट को किसी भी तरह से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जो भी मुख्यमंत्री बने वो अशोक गहलोत की पसंद का बने। तीनों बातों से ही निश्चित रूप से, यदि तीनों बातें आप इनके मान जाते हैं तो आपकी तो कोई किसी प्रकार की फिर वैल्यू रही नहीं, आप तो समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से इसको मना कर दिया कि ये संभव नहीं है। तो उन्होंने पैरेलल मीटिंग कर ली, और जो मीटिंग तय थी और जिसको अजय माकन ने आज इंटरव्यू में कहा इंडियन एक्सप्रेस में कि ये मीटिंग हमारी पहले से तय थी और हमने मुख्यमंत्री से पूछ कर तय की थी, वो मीटिंग हो ही नहीं पाई, कैंसिल करनी पड़ी, गहलोत उनसे जाकर मिले नहीं, और अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को आज 2 बजे अपना सा मुंह लेकर वापस लौटना पड़ा। और अब जो यहाँ पर कथानक चल रहा है और जो लोग कह रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि साहब के जिसको सोनिया गांधी अपने घर की चाबी देना चाहती थी उसी ने राजस्थान में ही उनका जो खजाना था उसमें डकैती कर ली। अशोक गहलोत ने साफ बता दिया कि मैं बिल्कुल आपके लिए निरापद नहीं हूं, किसी भी तरह से मैं आपका विश्वास पात्र नहीं रहूंगा, मुझे केवल अपनी कुर्सी की चिंता है, मुझे केवल और केवल राजस्थान का मुख्यमंत्री पद चाहिए, आपका अध्यक्ष पद जाए भाड़ में। अब राहुल गांधी सोनिया गांधी क्या करेंगे? इनके हालात वो हो रहे हैं जो औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर के हुए थे। बस इसमें अंतर यही है कि वो औरंगजेब के मरने के बाद हुआ था सारा कार्यक्रम, और यहाँ सोनिया गांधी के जीते जी हो रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी की जो स्थिति है उसमें वो जीते जी भी एक प्रकार से उनका आभामंडल समाप्त ही है। जो भी उनका असरो रसूख, उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव, जिसको भी कह सकते हैं, वो समाप्त हो चुका है, उसकी कोई परवाह करता नहीं। तो औरंगजेब के समय में ही, औरंगजेब के मरते ही आपको ध्यान हो बंगाल अलग हो गया था, तो वहाँ मुर्शिद कुली खान ने अपना अलग वर्चस्व कर लिया था, या आपका सादत खान ने अपना अवध में अलग कर लिया था, आसफ जाह ने निज़ामत अलग कर ली थी, सब अलग अलग हो गए थे। तो बस वही स्थिति अभी यहाँ पर हो गई है, अब सब अलग अलग हो जाएंगे। अशोक गहलोत जो है वो हो सकता है वो अपनी पार्टी बना ले अलग से, मुझे उसमें भी कोई ऐसा नहीं लगता कि उसमें भी कोई यदि हो जाए तो आपको आश्चर्य हो। तो इसमें फिर वही बात आ गई कि साहब जीता कौन या जीतेगा कौन। इसमें फिर मैं आपको वही कह रहा हूं कि जीतने की संभावना केवल और केवल एक पार्टी की है इसमें, और वो निश्चित रूप से जीतेगी। वो निश्चित रूप से इसलिए जीतेगी क्योंकि बीजेपी तो वैसे भी यह मना रही थी, आपको सच बताता हूँ ये, क्योंकि मेरी तो लगातार यहाँ राजस्थान में बैठा हूँ, जयपुर में बैठा हूँ, तो मेरी तो लगातार सभी पार्टियों के लोगों से बातें होती रहती हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले वस्तुतः वह चिंतित थे। उनका ये मानना है कि यदि अशोक गहलोत बने रहते हैं मुख्यमंत्री तो हमारे लिए 2023 की जीत बहुत आसान हो जाएगी, हमें बिल्कुल किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और जो ऊपर बैठी हुई हाईकमांड यहाँ पर इनकी भारतीय जनता पार्टी की, वो भी ये चाहती नहीं कि अब इस स्थिति में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। एक तो सचिन पायलट पहले बीजेपी की सहायता से वो एक तरह का विद्रोह कर रहे थे, विद्रोह करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना चाह रहे थे, अब वो मुख्यमंत्री बनकर भारतीय जनता पार्टी के सामने ताल ठोकेंगे। उनका कुछ पॉकेट्स में अच्छा प्रभाव है जहां पर वो स्वीप कर सकते हैं, पिछली बार भी जब अध्यक्ष थे तब तो उन्होंने किया था, जो गुजर मीणा बेल्ट है उसमें, क्योंकि वे अकेले ऐसे नेता हैं राजेश पायलट के बाद, उनके पिताजी के बाद, जो गुजर और मीणा में एकता स्थापित कर पाते हैं। और जो गुजर मीणा में स्थापित कर लेता है एकता, तो वो पूरा जो यहाँ का उत्तर पूर्वी जो राजस्थान है जिसमें लगभग 50 सीटें हैं, वो एक प्रकार से स्वीप करने की स्थिति में आ जाता है। तो यदि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी फिर वसुंधरा को साधना पड़ता, उनके लिए समस्या आती, क्योंकि वसुंधरा भी गहलोत की तरह ही हैं, उनको भी मुख्यमंत्री के अतिरिक्त और कोई पद स्वीकार्य नहीं है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसी प्रकार का एहसान करनी है, जैसे कि गहलोत समझते हैं। इन दोनों ने मिलकर इस प्रदेश को 50 वर्ष पीछे कर दिया, 1998 से लेकर और आज तक, यानी कि 24 वर्ष हो गए। इस 24 वर्ष में गहलोत और वसुंधरा को झेलते झेलते राजस्थान का लगभग ये समझिए कि दम निकल गया। तो अब वसुंधरा को साधने की समस्या उनके पास आती। सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बन जाते हैं या बन जाते तो भारतीय जनता पार्टी की समस्या निश्चित रूप से गंभीर हो जाती। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण से अत्यंत प्रसन्न है। इसलिए आप देखेंगे कि जगह जगह पर बैठ के भारतीय जनता पार्टी वाले केवल चुटकियां ले रहे हैं, और चुटकियां ले रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं, और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि गार्डन गार्डन हुए जा रहे हैं, बाग बाग हुए जा रहे हैं। तो प्रश्न अब कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर आ गया है। आप इसे ऐसे देखें, कांग्रेस पार्टी का जो अस्तित्व है उसके ऊपर अब प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि यह स्थिति ऐसी आ गई है जिसको सांप छछूंदर वाली गति बोलते हैं। सोनिया गांधी यदि इस प्रकरण को अनदेखा करती है और गहलोत को मुख्यमंत्री बने दे रहती हैं, क्योंकि इस प्रकरण के बाद, इस प्रकार के विद्रोह के बाद, यदि फिर भी वो गहलोत को अध्यक्ष बनाती हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि गहलोत इनके काबू में रहे। ये दिखा चुके हैं, कल इन्होंने पूरा डेमोंस्ट्रेशन कर दिया कि मुझे केवल राजस्थान से मतलब है और राजस्थान में मैं पूरा पावरफुल हूँ, राजस्थान की आपकी सरकार चली जाएगी, मेरे जितने भी विश्वस्त हैं, और जो उन्होंने जो अंक बताए 92 या जितने भी, वो अतिशयोक्ति हो सकती है, क्योंकि कोई भी किसी को भी ये नहीं पता कि एक्चुअल नंबर क्या था। वो 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। और जैसा कि माकन कह रहे थे कि हम अलग अलग लोगों से मिलेंगे, और इनके जो तीन दूत गए थे वहाँ पर, महेश जोशी, शांति धारीवाल और प्रताप सिंह काचरियावास, वो कह रहे थे नहीं नहीं आप ग्रुप में मिलिए। इसमें भी भेद है, क्योंकि अकेले में जब व्यक्ति मिलता है और जब उसको यह है निरापदता होती है, जब वो आश्वस्त होता है कि उसकी बात कहीं बाहर नहीं जाएगी, तब वो अपने मन की बात कह सकता है। और इन सभी को टिकट चाहिए, इनको पता है कि टिकट जो है वो कांग्रेस पार्टी ही देगी, और उसके बाद भी इन्होंने इस प्रकार का कदम उठा लिया, तो इसीलिए उठा लिया कि भाई सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, अशोक गहलोत जी बनने वाले हैं अध्यक्ष, तो वो तो हमें टिकट दे ही देंगे। लेकिन अब भी यदि सोनिया गांधी इनको अध्यक्ष बना देती हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी मूर्खता कोई हो सकती है। एक बात। और यदि सोनिया गांधी अशोक गहलोत की इस हिमाकत को, इस इनडिसिप्लिन को, जिसको कह सकते हैं कि घोर अनुशासनहीनता को यदि अनदेखा करती हैं, तो ये समझिए कि उनका जो आभा मंडल है, जो थोड़ा बहुत भी कहीं बचा कुचा हुआ है, वो पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा। वैसे भी लोगों को उनकी निर्णय शक्ति में या राहुल गांधी की निर्णय क्षमता में बहुत अधिक विश्वास है नहीं। सब देख चुके हैं कि क्या कमाल उन्होंने किया पंजाब में, और किस तरह से वो चन्नी वो पकड़ के लेके आए और पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। और यहाँ पर अब सत्यानाश हो चुका है, कुछ नहीं बचा। आप ये जान के अब आज मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी यदि इस प्रकार ही अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ती है, तो 30-40 से अधिक सीटें इनकी नहीं आने वाली हैं। बुरी तरह से हारेंगे। हो सकता है 21 का रिकॉर्ड भी तोड़ दें, क्योंकि वही वाली बात है कि कुछ लोगों में गहलोत के कार्यकलापों से वितृष्णा सी हो गई है। वो अब कांग्रेस पार्टी को 5 साल के लिए बाहर नहीं, मुझे लगता है कि 10-15-20 साल के लिए बाहर करने वाले। और वैसे भी इसका जो फायदा है, वो जो पार्टी आएगी आम आदमी पार्टी इत्यादि, वो अगले 10-15 साल में इसको बिल्कुल समाप्त कर ही देंगे, ऐसा लगता है। मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, मोदी जी के मुस्कुराने का कारण है, मोदी जी को राजस्थान 2 बार से 25 out of 25 सीटें देता आ रहा है। और अब अशोक गहलोत ने और सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी इत्यादि ने, इन्होंने सबने मिलकर यह बिल्कुल तय कर दिया है कि वो 25 out of 25 का आंकड़ा कायम रहेगा, और गुजरात से 26 out of 26 का कायम रहना है। मध्य प्रदेश में पिछली बार ये 29 में से 27 लाए थे, तो वो भी लगभग कायम ही रहना है। बचा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में भी पिछली बार 11 में से 9 थी, तो उसमें भी कोई अंतर आला नहीं। तो आप ये मान लीजिए कि इस पूरे प्रकरण से एक बात तो ये निश्चित हो गई कि ये जान लीजिए कि लोकसभा में मोदी जी की स्थिति जो है, कम से कम इन प्रदेशों की ओर से एक तरह से बिल्कुल निश्चितता की हो गई, और उनके लिए स्थिति निश्चिंतता की हो गई। तो निश्चित और निश्चिंत, ये दोनों स्थितियां आ गई। अब राजस्थान की जनता का क्या, हम जो लोग राजस्थान में बैठे हैं उनका क्या? ये सबको पता है कि इस पूरे प्रकरण में एक कहीं ना कहीं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का भी पेच है, और यदि संभवतः 30 सितंबर को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव हैं, और ये भी हो सकता है कि 30 सितंबर को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव सकुशल समाप्त होने के बाद अशोक गहलोत जी के सुपुत्र के पुनः अध्यक्ष बन जाने के बाद हो सकता है कि ये मान जाए कि भाई हम किसी तरह का चुनाव करवा देते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि गहलोत जी जो हैं वो सत्ता से चिपके रहने वाले ऐसे प्राणी हैं, ऐसे जंतु हैं कि आप कुछ भी कर लें लेकिन वो सत्ता से तो विलग ना होंगे। केवल पब्लिक उनको विलग कर सकती है, जो पब्लिक ने 2 बार किया, कांग्रेस पार्टी तो कभी नहीं कर पाई, क्योंकि जब विलग भी रहे तो भी वो किसी न किसी पावरफुल पोजीशन में सदैव रहे। तो अब देखिए आगे क्या होता है। ये तो पक्का है कि सचिन वर्सेस गहलोत में न सचिन जीतेंगे न गहलोत जीतेंगे, बीजेपी निश्चित जीतेगी। और हारेंगे कौन कौन, ये अभी देखने वाली बात है कि हारेंगे कौन कौन। आइए प्रश्न ले लेते हैं।